جان نثاروں کو سلام۔
الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ حضرات، مکمل ایک سال کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں، چند منٹ اپنی گفتگو، جب تک تاجدار شریعت اشرفی دولہا حضور سیدی سرکار اظہار اشرف صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں، تھوڑی دیر آپ اطمینان و سکون کے ساتھ ہماری گفتگو کو سماعت فرمائیں، اور جی لگا کے ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے اتنے گلاب ریت پر۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے اتنے گلاب ریت پر، اور جانِ بتول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانِ بتول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر۔ جانِ بتول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر۔ اور عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آلِ نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ حضرات، مختصر سا وقت ہے، بہت جلدی انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ نعت پاک کے لیے مجھے حکم ملا ہے، وقت زیادہ نہیں ہے، صرف دو تین شعر ملاحظہ فرما لیں۔ اسٹیج پر دارالعلوم علی حسن کے باوقار مدرسین تشریف فرما ہیں، ان کے حوالے سے چند اشعار میں حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں آپ۔ زندہ تمہی سے نام رسالت ہے اے حسین، زندہ تمہی سے نام رسالت ہے اے حسین۔ توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ زندہ تمہی سے نام رسالت ہے اے حسین، زندہ تمہی سے نام رسالت ہے اے حسین، اسلام آج تیری بدولت ہے اے حسین، اسلام آج تیری بدولت ہے اے حسین۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، اور یہ شعر میں حاضر کر رہا ہوں، اگر آپ سب کی ترجمانی ہوئے اس شعر میں تو ایک ایک شخص کی شرکت چاہوں گا میں اس شعر میں۔
آجا مدد کے واسطے اے فاطمہ کے لال،
اس دور پرفتن کو اپنے نگاہوں میں رکھیں اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں۔
آجا مدد کے واسطے، آجا مدد کے واسطے، آجا مدد کے واسطے اے فاطمہ کے لال،
دنیا کو آج تیری ضرورت ہے اے حسین، اسلام آج تیری بدولت ہے اے حسین۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، جب حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین نے کربلا کی طرف بھیجنا چاہا تو خیمے سے آواز آئی،
اکبر کو اذن جنگ نہ دے اے علی کے لال، اکبر کو اذن جنگ نہ دے اے علی کے لال،
یہ تو رسول پاک کی صورت ہے اے حسین، اسلام آج تیری بدولت ہے اے حسین۔ پڑھیے بلند آواز سے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مادن جود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم۔ حدیث فکر کی روشن ہنسی تحریر لکھ دیں گے، حدیث فکر کی روشن ہنسی تحریر لکھ دیں گے، جبینِ کفر پر ہم نعرہِ تکبیر لکھ دیں گے۔ توجہ ہے، حدیث فکر کی روشن ہنسی تحریر لکھ دیں گے، جبینِ کفر پر ہم نعرہِ تکبیر لکھ دیں گے، ہماری فکر میں اب بھی حسینی خون رقصا ہے، ہماری فکر میں اب بھی حسینی خون رقصا ہے، جہاں بھی کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے۔ حضرات، آج کی تاریخ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر سال پہلی محرم سے لے کر دس محرم تک ذکر شہداء کربلا ہم سماعت کرتے ہیں، نئے نئے مقرر کو بلاتے ہیں، نئے نئے خطیب کو بلاتے ہیں، مضمون وہی ہوتا ہے، تاریخ وہی ہے، نہ اس میں ہم کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں نہ آپ کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ انسان کے بیان کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ ایک سوال ہم آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتے ہیں، اے میرے دینی بھائیو، ایک سوال کا جواب مجھے دو۔ وہی بات ہر مرتبہ ہم سنتے ہیں، وہی شہادتیں ہر بار ہم سنتے ہیں، ان کی قربانی ہم سنتے ہیں، ان کے صبر کی داستان ہم سنتے ہیں، مگر میں اس قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے سالوں کے بعد بھی اس قوم میں تبدیلی آج تک کیوں نہیں آئی؟ آج تک ہم نے امام حسین کے نقش قدم پر چل کر کیوں زمانے کو نہیں دکھایا؟ محرم ختم ہوتی ہے، ہم پھر اسی روش پر آ جاتے ہیں۔
नमाज से हम दूर, सब्र से हम दूर, ईसार से हम दूर, अखलाक से हम दूर,
यही तो पैगाम करबला से हमें मिला है। लेकिन सिर्फ करबला तक, 10 मुहर्रम तक ही महदूद रहता है, उसके बाद हमारा ईसार कहाँ चला जाता है, हमारा अखलाक कहाँ चला जाता है, नमाजों से दूर हम क्यों होते चले जा रहे हैं। इमाम अली मकाम ने करबला की तपती रेत पर छुरी सामने है मगर नमाज को कजा नहीं किया। लेकिन हम नमाज से दूर, और आज तो नमाज का ढिंढोरा पीटने वाले जमाने में इस अंदाज से घूम रहे हैं। हमने तो सुना था कि नमाज फर्ज है, कुरान ने कहा नमाज फर्ज है, मगर हमारे ऊपर एक ऐसी चीज मुसल्लत की जा रही है। तवज्जो के साथ बंबई के खुशअकीदा मुसलमानों समाप्त करो, एक जुमला बोलने जा रहा हूं, तवज्जो है आपकी, और यह बात दूर दूर तक जानी चाहिए, खाली इसी ग्राउंड में ना महदूद होकर के रह जाए। नमाज के लिए अभी बड़ी बड़ी तरकीबें लोग निकाल रहे हैं, अभी एक तरकीब निकाली गई 3 महीने पहले। क्या तरकीब निकाली? काबा शरीफ के इमाम को हिंदुस्तान लाया गया, काहे के लिए? नमाज पढ़ाने के लिए। यहां भी वो आए थे, हमारे यहां दिल्ली में भी आए थे, बड़े बड़े पोस्टर छापे गए, और पोस्टर की हेडलाइन सुनो, जिसको काबे में नमाज पढ़ने का सवाब चाहिए वो रामलीला मैदान में आए।
तवज्जो है आपकी? अरे तवज्जो है ना, तो जवाब दो, मिस कॉल मत मारो।
ऐलान किया गया,
रामलीला मैदान में इंतजाम किया गया, इमाम हरम रामलीला मैदान में नमाज पढ़ाएंगे।
उलमा की तवज्जो चाहूंगा,
इमाम हरम रामलीला मैदान में नमाज पढ़ाएंगे। जिसे काबे में नमाज का सवाब चाहिए वो रामलीला मैदान में आए, काबे में नमाज का सवाब मिलेगा। भीड़ लग गई, तांता लग गया, लोगों ने आना शुरू कर दिया।
हमारे पास एक साहब ने फोन किया, अंसार साहब, क्या बरेलवी मुसलमान इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ने जाएगा?
हमने कहा नहीं जाएगा। बोलो, हमने जवाब सही दिया या गलत दिया? जल्दी से बोलो, जवाब सही दिया गलत दिया?
सामने वाले ने उधर से हमसे पूछा कि बरेलवी सुन्नी मुसलमान इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ने जाएगा?
हमने कहा नहीं जाएगा। कहा आप इतने दावे से क्यों कह रहे हैं कि नहीं जाएगा? मैंने कहा दावे से इसलिए कह रहा हूं कि ये बरेलवी मुसलमान, ये सुन्नी मुसलमान अपने इमाम के पीछे तो पढ़ने नहीं जाता, दूसरे के पीछे क्या पढ़ने जाएगा है? ये अपने इमाम के पीछे तो पढ़ने नहीं जाता, अगर इसने अपने इमाम की इक्तदा की होती तो मस्जिदें हमसे छीनी ना जाती, हमें जगह दी जाती, यहां मस्जिद बना लो, यहां आकर के नमाज अदा करो।
टॉपिक आज का ये नहीं है, लेकिन आज बात आ गई तो मैं अर्ज कर दूं, टॉपिक है करबला का। शहादतें आप सुनते रहते हैं, बात नमाज की चल रही है, सिर्फ मुख्तसर सा वक्त है, चंद बातें मैं अर्ज करना चाहता हूं। शहादत इमाम हुसैन, तमाम अजीजो अकारिब जितने करबला में गए, एक तारीख के मुताबिक 82 थे और एक तारीख के मुताबिक 72 थे। ए यजीद, तूने कितना लश्कर कूफा भेजा था? जवाब मिलेगा 22,000, और लश्कर तैयार था, जरूरत पड़ती बुला लिया जाता। ए यजीद, 82 लोगों के मुकाबले में 22,000 का लश्कर,
जिसमें औरतें भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है, और जंग के इरादे से भी नहीं आए, फिर इतना बड़ा लश्कर भेजने की क्या जरूरत थी? यजीद जवाब देगा, हम किसी मामूली आदमी के मुकाबले में नहीं जा रहे थे, नबी के शहजादों के मुकाबले में जा रहे थे। हम इतना जानते थे कि अगर नबी के खानदान का एक बहादुर भी अगर करबला के मैदान में आ गया और अगर पूरी तरीके से शुजाअत दिखा दी तो 22,000 का लश्कर क्या 22,00,000 अगर होंगे तो सबका सफाया कर देगा।
इसलिए भेजा गया था इतना लश्कर। शहादतें होती चली जा रही हैं, बारी आई शबीहे रसूल की, बारी आई हजरत अली अकबर की। करबला के मैदान में तशरीफ ले गए, दुश्मनों को गाजर और मूली की तरह काट दिया। बड़े बड़े पहलवान तन्हा मुकाबला ना कर सके उस शेर का जो 3 दिन से प्यासा है, और अगर पानी मिल जाता तो क्या हाल होता। प्यास की शिद्दत ने बेचैन किया, वापस गए बाबा जान की तरफ। बाबा जान प्यास की शिद्दत सता रही है, हजरत इमाम अली मकाम ने अपने हाथ से अंगूठी उतारी और हजरत अली अकबर के मुंह में दे दी, बेटा इसे चूस लो, तस्कीन मिल जाएगी। अंगूठी को चूस लिया, फिर वापस मैदान में चले गए, फिर लड़ते रहे। वक्त आया, चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया, एक तीर आया, एक नेजा आया, हजरत अली असगर के सीने में चुभ गया।
कई बार आपने ये रवायत सुनी होगी,
जैसे ही नेजा चुभा निडाल होके जमीन पर गिर पड़े, आवाज लगाई बाबा जान को। हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत बयान करते हैं कि हजरत इमाम हुसैन 56 साल की उम्र थी मगर एक भी बाल सफेद नहीं हुआ था। 56 साल की उम्र, एक भी बाल सफेद नहीं हुआ, मगर जब करबला में बेटे का लाशा उठाने के लिए गए और वापस आए तो एक भी बाल काला नहीं था, सारे बाल सफेद हो गए थे।
बेटे की लाश ने इतना निढाल कर दिया था कि बुढ़ापा आ गया। और वक्त आया, हजरत ज़ैनब आ गई, भाई जान अली असगर की प्यास देखी नहीं जाती। वाकया आपने सुना होगा, लेकिन इसमें एक नुक्ता है जो इन उलमा की मौजूदगी में बयान करना चाहता हूं। लेकर के आ गई गोद में, भाईजान 6 महीने का बेटा है, हाथ पैर चला रहा है, प्यास की शिद्दत परेशान कर रही है। मुअर्रिख ने लिखा कि जबान सूख रही है, हाथ पैर हजरत अली असगर फेंक रहे हैं। मुअर्रिख ने लिखा प्यास की शिद्दत थी, मगर हुसैन का मानने वाला, हुसैन का चाहने वाला प्यास की शिद्दत तस्लीम नहीं करता। जब उसने हाथ पैर फेंकना देखा
तो तसव्वुर में कहा, तवज्जो है आपकी,
क्या कहा कि हजरत अली असगर पानी नहीं मांग रहे थे, वो जानते थे कि सब शहीद हो चुके, अब बाबा जान की बारी है। वो ये कह रहे थे, बाबा जान खुलती है बंद होती है, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए।
नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत अल्लाहू अकबर, शहीद करबला
जिंदाबाद। वक्त आया, हजरत अली असगर ने भी जामे शहादत नोश फरमा लिया। अब बारी थी ताजदारे करबला की, अब बारी थी सैयदुश्शोहदा इमाम अली मकाम की। आप घोड़े पर तैयार हुए, सर पर नबी पाक का अमामा बांधा, जुल्फिकारे हैदरी अपने हाथ में ली, हजरत अमीर हमजा की ढाल पुश्त पर लगाई, घोड़े पर सवार हो गए।
जैसे ही आप चलने लगे, सवार हुए, घोड़े को इशारा किया, घोड़े ने सर झुका दिया।
तवज्जो है आपकी?
घोड़े ने सर झुका दिया, आगे नहीं बढ़ा।
हजरत इमाम अली मकाम ने लगाम को खींचा कि घोड़ा आगे बढ़े, लेकिन आगे नहीं बढ़ता।
तीसरी बार आपने उसको इशारा किया, उसने फिर सर नीचे झुका लिया। ताजदारे करबला इरशाद फरमाते हैं, चलता क्यों नहीं? फिर उसने सर झुकाया।
जैसे ही नीचे सर झुकाया, हजरत इमाम अली मकाम ने घोड़े के झुके हुए सर को नीचे की तरफ देखा।
देखते क्या है कि घोड़े के दोनों पीछे के पैर हजरत सकीना ने पकड़ रखे हैं, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा।
सरकार इमाम हुसैन घोड़े से नीचे उतर के आए,
इरशाद फरमाया, बेटी क्या बात है? तोतली जबान में, मासूम जबान ने कहा, बाबा जान, जितने लोगों को घोड़ा करबला के मैदान में लेके गया है, कोई वापस नहीं आया है। मैं ये डर रही हूं कि आप घोड़े पर सवार होके जा रहे हैं, क्या आप भी वापस नहीं आएंगे? चीख निकल गई।
हजरत ज़ैनब रोती हुई खैमे से वापस आई, गोद में उठा लिया।
हजरत ज़ैनब गोद में लेती है, सकीना ने फिर पुकार के कहा, बाबा जान, आप जा रहे हैं, हमें रात में अपने साथ अब कौन सुलाएगा? कौन हमें कलमा पढ़ाएगा?
मेरे दोस्तों,
तारीख करबला का वो बाप जिसने सारी कायनात में अंधेरा कर दिया, सारी कायनात अंधेरे में डूब गई, ऐसा वक्त आया के ताजदार करबला मैदान में तशरीफ ले गए। बहुत मर्तबा जंग होती रही, लफ्जों की जंग भी हुई, तलवारों की जंग भी हुई। एक वक्त ऐसा आया कि करबला की तारीख मुकम्मल हो गई। हमारी जबान में वो ताकत नहीं कि हम बताएं कि कैसे तीर चला। तारीख का बाब यहां मुकम्मल हुआ, अंधेरा छा गया। वक्त आया कि तमाम यजीदी अपने उन जहन्नमियों के जनाजों को उठाने के लिए आए। नमाज जनाजा पढ़ी, दफन किया, मगर खानदान अहले बैत का पुरसाने हाल वहां कोई न था। सरों को उठाया, नेजों पर रखा और चल दिए। किसी कहने वाले ने कहा कि सुलगते शोलों से आबिद को जाके लाई है,
सुलगते शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, सुलगते शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर, इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है।
करबला का बाब जब खत्म हुआ, एक बात बड़ी गौर से समाप्त करें।
हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रजी अल्लाह ताला अन्हों से लेकर सैयद शोहदा इमाम आली मकाम तक सब एक बार शहीद हुए,
मगर हजरत ज़ैनब बार बार शहीद हुई। हर मैयत के बाद शहीद हुई, हर शहादत के बाद शहीद हुई। वक्त आया, काफिला चला दमिश्क के बाजारों में। ख़वातीन इस्लाम शहजादी रसूल, उनके सरों पर आज दुपट्टे नहीं है। ये वो शहजादियां हैं कि जिनके घर में आसमान के फरिश्ते भी अदब से आया करते थे। आज जालिमों ने ऊंट की नंगी पीठ पर शहजादियों को बैठाया। ये लोगों, ये वही रवायतें जो हर साल आप सुनते हैं। नंगी पीठ पर बैठाया, सवारियां चल रही हैं, काफिला चल रहा है दमिश्क के बाजारों में, अंधेरा होने लगा। सबसे पीछे के ऊंट पर मुअर्रिख लिखता है कि हजरत सकीना बैठी हुई थी, बाबा जान की आवाज लगा रही थी। जालिम आगे बढ़ा, चीख कर कहा, बच्ची चुप होती है नीचे गिरा दूं।
आपने फिर बाबा जान को पुकारा, पुकारना था कि उस जालिम ने हजरत सकीना को नीचे फेंक दिया। आप नीचे गिर गई, गिरते ही बेहोश हो गई। काफिला चला जा रहा है,
आगे जैसे ही काफिला पहुंचा, ताजदार करबला का सरे अनवर जो कुरान की तिलावत करता हुआ जा रहा था जमीन पर गिर पड़ा। सरकारे इमाम हुसैन का सर जमीन पर गिर पड़ा। मान लेजे के उठाना चाहा, सरे इमाम जमीन से नहीं उठा। बहुत कोशिश की गई, शोर बरपा हो गया, इमाम का सर जमीन से नहीं उठ रहा। आवाज हजरत जैनुल आबदीन तक आई,
जिनके हाथों में बेड़ियां हथकड़ियां पड़ी हुई हैं, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। आवाज आई, उन्होंने हजरत ज़ैनब से पूछा, फूफी जान ये शोरगुल कैसा हो रहा है, ये आवाजें कैसी आ रही हैं? हजरत ज़ैनब ने कहा, बेटा भाईजान का सर जमीन में गिर गया है, अब उठाए नहीं उठ रहा।
हजरत ज़ैनुल आबदीन फरमाते हैं, फूफी जान जितने लोग करबला से बचकर आए हैं, जरा सबकी गिनती तो कर ले, सारे लोग मौजूद हैं या नहीं।
इतना सुनना था कि हजरत ज़ैनब ने जो बच्चे जो बीवियां साथ में काफिले की थी, सबके नाम ले लेकर के आवाज दी। जितने लोग मौजूद थे सबने लब्बैक कहा, मगर जब सकीना को आवाज दी तो कोई आवाज ना आई,
कोई आवाज ना आई। आप समझ गई, आप ऊंट से कूदी और पीछे पीछे जिस रास्ते से काफिला आया था उसी रास्ते पे आप चल पड़ी। आगे अंधेरे में देखती है, एक कोई ज़ईफ़ा बैठी हुई है, उनकी गोद में एक बच्ची है।
आप उनके करीब पहुंचती हैं, पूछती हैं, ए नई खातून, आप कौन है जो आपने हमारी बच्ची को संभाल रखा है? उन्होंने सर को उठाया और उठाने के बाद इरशाद फरमाया, ए ज़ैनब पहचाना नहीं, मैं तेरी माँ फातिमा हूं जो अपनी सकीना को गोद में लेके बैठी हुई। आपने हजरत सकीना को गोद में लिया, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहां हवा में चली गई, उसके आगे मुअर्रिख ने कुछ नहीं लिखा। काफिला आगे चला, दमिश्क के बाजारों में जिस वक्त पहुंचा तो पहले से पूरी रात ये पूरे दमिश्क के बाजारों में ऐलान कर दिया गया था कि कल बागियों का काफिला यहां से गुजरेगा, जिसे वो काफिला देखना है आकर के देख लो। उन जालिमों ने ये नहीं कहा कि इमाम हुसैन के खानदान के लोग आ रहे हैं, बल्कि ये ऐलान किया कि बागियों के सर आ रहे हैं, जिन्होंने यजीद से बगावत की है उनके सर आ रहे हैं। लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए, अपनी छतों पर खड़े हो गए। काफिला गुजर रहा है, जैसे ही काफिला गुजरा, हजरत सरे इमाम अली मकाम का सर काफिले के थोड़ा सा, हजरत ज़ैनब के घोड़े ऊंट के थोड़ा सा आगे था। लोग बीवियों को भी देख रहे हैं, सरे इमाम को भी देख रहे हैं, ऊपर से लोग पत्थर मार रहे हैं कि बागियों का काफिला है। थोड़ी देर के बाद वहां एक मुहब्बे अहले बैत जिनका नाम सहल था, वो पता नहीं कहां से सफर करते हुए दमिश्क के बाजारों में पहुंचे। जब शोरगुल सुना, उन्होंने पूछा कि ये किसका काफिला है। लोगों ने बताया कि ये बागियों का काफिला जा रहा है, मगर वहां कोई एक आशिक रसूल थे, उन्होंने कहा कि हुसैन के खानदान का काफिला ये जा रहा है, करबला में इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। जनाब सहल हजरत ज़ैनब के करीब आए और अदब से सलाम अर्ज किया। सलाम अर्ज करने के बाद कहा, ए बीबी, मैं इस बयाबान में आपकी क्या मदद कर सकता हूं? हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, आप कौन हैं? जहां लोग हमें पत्थर मार रहे हैं वहां आकर के तुम हमें अदब से सलाम कर रहे हो, तुम कौन हो? जहां हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, यहां मुझे सलाम करने वाला कौन है? साल फरमाते हैं, मैं एक जमाने में मदीने में रहा करता था और अहले बैत की अजमत को मैं समझता हूं। मैंने आपकी माँ के किस्से भी सुने हैं, हजरत अली के किस्से भी सुने हैं, इमाम हुसैन के किस्से भी सुने हैं और नबी पाक के किस्से भी सुने हैं। आप बताओ आपके इस बियाबान में हम क्या मदद कर सकते हैं? उन्होंने अर्ज किया, आप बताइए हम क्या मदद कर सकते हैं?
حضرت زینب نے فرمایا یہاں آپ ہماری کیا مدد کریں گے؟
بس ایک چھوٹا سا کام کر دیجئے، اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو جو میرے امام کے سر کو نیزے پہ لے کے میرے آگے آگے چل رہا ہے اس سے کہہ دیجئے کہ ہم سے تھوڑا سا دور چلا جائے۔
انہوں نے کہا کہ بیوی ایسا کیوں؟
کہا اس لیے کہ میرا بھائی قرآن پڑھ رہا ہے، دنیا میرے بھائی کو قرآن پڑھتے دیکھے گی، ہمارے سر ننگے ہیں، ہمارا پردہ رہ جائے گا، لوگوں کی توجہ ہمارے طرف نہیں ہوگی، میرے بھائی کو سب قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیں گے۔
اتنا سننا تھا کہ سہل اس نیزے والے کے قریب پہنچے اور اس سے کہا کہ اس نیزے کو تھوڑا سا آگے لے لے۔ اس نے جرح کرنا شروع کر دیا سہل سے۔ سہل کے ساتھ اس کا دوست ایک عیسائی تھا جس کی کمر پر تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے بحث کیا، اس عیسائی مرد نے تلوار کو نکالا اور نکالنے کے بعد ہوا میں لہرایا۔ مورخ لکھتا ہے وہاں اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ اے لوگوں، یہ سر امام ہے، شہید ہونے کے بعد بھی لوگ داخل اسلام ہو رہے ہیں۔
کلمہ پڑھا اور دشمنوں پر وار کر دیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ تقریباً 12 لوگوں کو اس نے نارے جہنم تک پہنچا دیا۔ جب حضرت زینب کو یہ خبر ملی تو آپ نے پکار کے کہا، سیکھ کے کہا کہ یہ آگے کیسا شور ہے؟
حضرت سہل قریب آئے اور بتایا کہ بیوی، ہمارے ساتھ جو عیسائی تھا اس نے یہ بات سنی، جب یہ نیزے کو آگے نہیں لے جا رہا تھا اس نے غصے میں 12 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ حضرت زینب نے اپنے اونٹ کا رخ کعب گنبد خضرا کی طرف موڑ دیا اور چیخ کے آواز لگائی، نانا جان، آج آپ کی امت میں سے مجھے کوئی بچانے نہیں آیا
مگر ایک غیر مسلم، اس نے ہماری مدد کی ہے۔ نانا جان، میدان میں شروع